தாமதம் மோஷிதம் செய்வ ஓங்காராய் நமோ நமோ. மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ மங்களம் துந்துந்தாரியோ ஜெயந்தர்மோ சுமங்கலம் சர்வமங்கள் மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வதர்மானம் ஜெயம் ஜெயதி சாஸ்திரம் நம சமய சாராய சுவானுபூதிய சகாசத்தை ஸ்ரீஸ்வராவாய் பாவாய் ஸ்வரபாவாம் சரஸ்வதி ஏதோ நீ காத்துக்கோப்பா நான் தர்ஷன் வரணும் ஸ்ரீசாமி பாவிவா பாவா சுவேசி ஓம் ஸ்ரீ நமசி தெரிய நமசி தெரிய उसके ऊपर भी पूरा प्रवचन चला। जो अभी जो प्रवचन चला ना वो ये अपन प्रवचन कल रहे हैं उसके पहले जो अमूचंद्र आचार्य देव ने जो उसका उपोद्घात किया है उसमें ये सब बातें रखी हुई है। अपन ने उसका पूरा कलप लिया है पहले से, तो ये पूरी मुझे उसका प्रवचन में जो जो चर्चाएं आ जाई ये जो परिशिष्ट का प्रकरण है 14 भूमि का जो कलप चल रहा है अज्ञानी और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन इसमें आता है। अज्ञानी की अनादि से मिथ्या मानने का क्या चाहिए भी है और वो मिथ्या मान्यता उसकी चली जाए तो वो कैसे ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी होने के बाद में उसका जानना स्वभाव कैसे चलता है उसका पूरा वर्णन ये जो 14 पलक से उससे आया है। ये पूरा जो प्रकरण है वो पहले भी ये बात हुई है कि ये पूरा परिणाम द्रव्य का प्रकरण है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु एक तरफ है और दूसरी तरफ है, ये चीज इसमें सिद्ध करनी है कि आत्मा ऐसी होती है ना कि गुरुदेव का प्रवचन में द्रव्य दृष्टि की बात आवे तो श्रोता को ऐसा लगता है कि ये ही सत्य है बाकी सब असत्य है और वही गुरुदेव का प्रवचन में पर्याय की चर्चा आ रही है तब उसको पर्याय की बात करती लगे और द्रव्य दृष्टि की बात उसको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों बात दोनों जगह सही है। पूरा स्वरूप ही अनेकांत स्वरूप ही वस्तु पूरी है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु पूरी है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु पूरी है और यहाँ वही वस्तु को अखंड बोलते हैं। इसमें के द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना वो सब गलत में इसलिए भी आ रहा है, नहीं आता ऐसा नहीं है क्योंकि अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनता है कि ऐसा द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को जानकर
परसों मेरे में कुछ होता नहीं है, मेरा नाम में परसों कुछ कमी जैसी नहीं होती है, इतना पर को जान लू तो मेरा ज्ञान बढ़ जाए और पर को जानना बंद करूँ तो मेरा ज्ञान कम हो जाए, या तो पर को जानने से मेरा ज्ञान में कोई विकृति पैदा हो जाए, ऐसी कोई बात ज्ञान में होती नहीं सकती। ज्ञान का स्वभाव को जानना है, जिसको ज्ञान बोला जाए वो किसको न जाने, उसका स्वभाव ही जानना हो तो जानना 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 तो चलता ही देता है, उसमें उसकी मान्यता में कहा मिथ्या एकांत हो जाता है, वो तो उसको ढूंढना पड़ेगा। ये कलप में तो बहुत स्पष्टीकरण करते हैं और इसका कुछ गुरुदेव जी का ये पूरा कलप का प्रवचन मेरे ख्याल से 20 से 22 प्रवचन है पूरा, उसने पूरा अज्ञान की मान्यता कैसी चलती है और वो अज्ञान कैसे दूर हो जाए और वो ज्ञानी हो जाए तो ज्ञानी की मान्यता कैसी होती है, ये पूरा प्रकरण ये कलप में आया है। तो ऐसा नहीं समझना कि जब दृष्टि के इंद्रिय की बात चले तो पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दृष्टि का विषय को दृष्टि ही करने वाली को पर्याय ही होती है और दृष्टि का विषय में पर्याय नहीं है, सर्वथा नहीं है, ऐसा कहा जाए तो ऐसा नहीं समझना कि पर्याय कहीं चली गई है। दृष्टि का विषय में पर्याय नहीं है उसका मतलब ही द्रव्य और पर्याय दोनों की स्थिति है, उसको जहाँ है वहाँ रखती है, अलोकाकाश को नहीं देखती है। तो इस तरीके से ये सब प्रकरण समझना चाहिए और जैन दर्शन में सर्वांगी अभ्यास होना चाहिए। कोई एक वस्तु को पकड़ के जीव देख जाए, देखने जैसा तो एक द्रव्य को पकड़ते ही है, मगर पर्याय का ज्ञान को भी निकाल दे, ऐसा होता ही नहीं, पर्याय में पर का ज्ञान होता ही नहीं, पर्याय में पर्याय का ज्ञान होता ही नहीं, मात्र पर्याय में द्रव्य ही होता है, ऐसा कोई मिथ्या एकांत कर ले तो उसकी मान्यता समेत नहीं हो सकती। इसलिए जो पूरा प्रकरण चलता है वो पूरा एकदम अनेकांतमय प्रकरण है और अनेकांत समय प्रगट समय एकांत से होता है और वो समय अनेकांत जिसको प्रगट होता है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप को जैसा है ऐसा यथार्थ रूप से जानता हुआ परिणाम का है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था और वस्तु की स्थिति है। इस तरीके से अपने को विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एक प्रवचन आए तो दूसरा विषय आए, दूसरा प्रवचन आए तो दूसरा अलग विषय आए, सर्वांगी स्वाध्याय होना चाहिए। सर्वांगी स्वाध्याय नहीं हो तो कहीं न कहीं उसकी मिथ्या बुद्धि चलती रहती है, वो छूटती नहीं करती। कितना भी त्रिकाली द्रव्य का विकल्प किया करे मगर ऐसे त्रिकाली द्रव्य उसकी दृष्टि में नहीं आता है, समझ से ही द्रव्य दृष्टि में आता है, यथार्थ समझ होनी चाहिए, यथार्थ समझ के बिना द्रव्य दृष्टि नहीं होती है, ऐसा ये पूरा प्रकरण इस तरीके से है। तो बहुत सी बात मुझे गुरुदेव जी के प्रवचन में आते अपनी खुद की बात भी आज मुझे गुरुदेव जी ने की और चर्चा करते 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 मैंने की जो विषय ज्ञान का विषय है उसकी भी स्पष्टता इसकी जो चलती रहती है, तो ये प्रकरण में बहुत से लोगों को प्रश्न है, कल रात को भी प्रश्न आया था, अभी ये गुरुदेव जी पेश थे तो उसमें तो पूरा स्पष्टीकरण आया कि स्वतर को कैसे जानता हूँ, ज्ञान स्वतर को दोनों को जानता है, ज्ञान को पर ज्ञान पर को जानता है उसको ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान पर को नहीं जानता है अच्छा भैया वो दिलीप का पर को नहीं जानता है वो भी शास्त्रों में है, और पर को जानता है वो भी शास्त्रों में से ही निकला है। जहाँ अनेकांत स्वभाव सिद्ध करना है और ज्ञान का जानना सिद्ध करना है, अगर ज्ञान अपने से ही अपने स्वभाव से ही स्वपर को न जाने तो ज्ञान की दिव्यता ही नहीं रहती। प्रवचन सार में आया तो ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, और ज्ञान का स्वभाव जैसा है ऐसा सबको ज्ञान में रह के जानना है, पर रूप होके ज्ञान सबको नहीं जानता। सचमुच तो स्वरूप होके भी सबको नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान में रह के ही स्वपर को जानता रहता है। ज्ञान अपना क्षेत्र छोड़ता ही नहीं, उसकी मान्यता में पर का जानना होता है तो उसको ऐसा ही लग जाता है कि मैं पर रूप हो गया। जैसे 200 का पलट आता है उसमें आएगा ही कि आत्मा सर्वद्रव्यमय हो गया, ऐसा लगता है उसको। आत्मा तो अपने द्रव्यमय ही रहता है मगर सर्वद्रव्यमय हो गया, ऐसा उसको लगने लगता है। वो मान्यता ही मिथ्या मान्यता है। कलश टीका में पहला कलप है, सबसे पहला कलप इसमें कलश टीका में लिखा है कि जीव है उसका ज्ञान और उसका सुख उसके पास है। जीव का ज्ञान और जीव का सुख उसके जीव में है, उसका ज्ञान और उसका सुख कोई पर में नहीं है। पर में मेरा ज्ञान कि मेरा सुख कोई पर पदार्थ में नहीं है। तीर्थंकर भगवान में भी मेरा ज्ञान और मेरा सुख नहीं है, मुनिराज में भी नहीं है, किसी में नहीं है। मेरा ज्ञान और मेरा सुख मेरे में है, तो मेरे को जो जानूंगा तो मुझे ज्ञान और सुख की प्राप्ति मेरी पर्याय में प्रकट होगी। मुझे छोड़ के मैं मेरा ज्ञान और मेरा सुख उधर से मिल जाएगा ऐसी मान्यता से मैं उसको जानने जाऊंगा तो वहां मेरा ज्ञान और मेरा सुख नहीं है, तो मुझे मेरा ज्ञान और मेरा सुख नहीं मिलेगा। ऐसा सबसे पहला कलप में वाग्देव जी का नहीं था। इसलिए सभी प्रकार के प्रथम जिनावन में आए हैं अपने को अपना प्रयोजन की सिद्धि कैसे करना, कि अपना स्वभाव अपना ज्ञान सुविधा में कैसे आ जाए, ये तो निर्णय अपने को करना पड़ेगा। निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक क्या है कि असमंजसता चलती रहेगी, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा। जीव सुनता भी बहुत है, पद भी लेता है, मगर पूज्य गुरुदेव सिंह बोलते हैं कि वाचे पण नहीं करे विचार ते समझे नहीं सगड़ोता। जिसको प्रवचन सुन के प्रवचन पढ़ के विचार ही नहीं चलता है, विचार की जागृति ही नहीं होती उसके ज्ञान में, ऐसा यहाँ कथन क्यों आया, इसका वाक्य क्या है, ये वाचक ऐसा शब्द आया तो इसका वाक्य क्या है, ऐसा भाव उसके ज्ञान में पकड़ नहीं मिला और ऐसी विचार दशा ही नहीं चलती। इसलिए उसको विचार नहीं चलता, इसलिए उसका निर्णय के लिए उसका दरवाजा खुलता ही नहीं। जब तक विचार दशा नहीं चलती, एकांत से सुनना और एकांत से पढ़ना बस, यही प्रवृत्ति है जीवों की, अधिकांश जीवों की। विचार करने वाले बहुत कम है, सुनने पढ़ने वाले बहुत मिले हैं, मगर उसके ऊपर विचार करने वाले बहुत कम जीव होते हैं। इसलिए अध्ययन जरूर करना मगर उसके बाद में उसका विचार जरूर करना। मुझे गुरुदेव जी का प्रवचन 1 घंटे का होता है ना, 1 घंटे का वो तो एकदम चला जाता है सुनने में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक न्याय आते रहते हैं। देखो अभी स्वक्षेत्र प्रक्षेत्र का बोला है, स्वकाल प्रकाल का बोल, स्वभाव प्रभाव का बोल, नित्य का बोल, 8 बोल गुरुदेव ने चला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। अपन यहाँ तो 50 मिनट में सभी चर्चा करके एक बोल या दो बोल तो मुश्किल से चला सकते हैं। तो गुरुदेव की वाणी में जो प्रवाह आता है, गुरुदेव का जो अंदर चिंतन और मंथन चलता है, वो मंथन जो उसका बाहर निकलता है तो सुनना तो होता है, मगर कहीं बार ऐसी आती है कि वो चली जाती है अपने ज्ञान में से, वो अपने ज्ञान में एकदम अवधारण में नहीं आती है। इसलिए प्रवचन सुनते भी एक घंटे का प्रवचन उसके पर 3-4 घंटा विचार करेंगे तब तो थोड़ा पता चलता है कि गुरुदेव ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि गुरुदेव की वाणी की समझो कि तीर्थंकर की तो ओम दिव्य ध्वनि होती है और गुरुदेव की तीर्थंकर व्रत देखना है, तो ऐसी देखना अपने पास बच गई है और इतना विस्तार आता है, इतना विस्तार आता है कि गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि अपन इसको क्या बोले, इसने स्पष्टीकरण क्या करना है, स्पष्टीकरण करने की जगह नहीं बचती है। इसी को चर्चा खुद गुरुदेव श्री के माध्यम से आती है। इसलिए मेरा कहने का आशय ये है कि सुनते पढ़ते विचार बहुत करना चाहिए, तब निर्णय की भूमिका आती है। निर्णय की भूमिका आने के बाद में भेद ज्ञान का प्रयोग उसको चलता रहता है और फिर उसको अनुभूति का पकाल पकता है, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए सबको विचार बता पहले में पहले चलानी चाहिए, कोई भी विषय चले, जैसे अपने भाई साहब का शक्ति का विषय चलता है, यहाँ ये अनेकांत का विषय चलता है, सभी मानव विषय है। इसमें अपने को अपना ज्ञान में कसरत करनी चाहिए। ज्ञान है न, वो ज्ञान संशोधक है, संशोधक और जागरूक देव है ज्ञान, उसकी संशोधन वृत्ति चलनी चाहिए प्रति समय, वो संशोधन करता ही रहता है ज्ञान, तो ज्ञान से जागरूक जाने के लिए संशोधन करने की। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है, इससे क्या सिद्ध करना है, ये कौन सा प्रकरण चल रहा है, कौन सी दादा का विवेचन चल रहा है, ये अनेकांत की व्यवस्था क्या है, सम्यकांत की व्यवस्था क्या है, उससे लग पूर्वक सम्यक अनेकांत कैसे होता है, ये सब विचार दशा चलनी चाहिए। कल जो अपन ने बोल दिया था 252 नंबर का फलक अपना चला था, वो स्वद्रव्य का फलक था, माने कि अस्थि का फलक था, इसलिए अपन ने सब दृष्टि के विषय की चर्चा की थी। आज वो ही फलक 252 फलक की बात 253 फलक आता है, वो उसमें स्वद्रव्य नास्ति का फलक है, वो अपन शुरू करते हैं। 253 नंबर का फलक है, सप्ताह में बोलेंगे।
द्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः
एकांतवादी अज्ञानी दुर्वासना से पुण्य की वासना से वासित होता हुआ आत्मा को सर्व द्रव्य में मानकर परद्रव्यो में स्वद्रव्य का भ्रम से परद्रव्यो में विश्राम करता है। आत्मा को सर्व द्रव्य में मानता है, माने कि मैं स्वद्रव्य हूं ऐसा नहीं मानता है, सर्व द्रव्य में मानता है, परद्रव्य में स्वद्रव्य का भ्रम से परद्रव्य में विश्राम करता है। और त्यागवादी तो समस्त वस्तुओं में परद्रव्य स्वरूप के नास्तिक जानता हुआ
जिसका सिद्ध ज्ञान महिमा निर्मल है, ऐसा भक्त का हुआ वह द्रव्य का ही आश्रय करता है। अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषा है, त्यागवादी अनेकांतवादी माने ज्ञानी और एकांतवादी माने अज्ञानी। भावा एकांतवादी आत्मा को सर्वद्रव्य में मानकर आत्मा में जो परद्रव्य अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोप करता है, और त्यागवादी तो सर्व पदार्थों में परद्रव्य अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में ही रमता रहता है। क्या कहना चाहते हैं कि अज्ञानी को ऐसा ही भ्रम चल रहा है कि मेरा आत्मा पर द्रव्य नहीं है, माने कि पर और स्व की एकत्व बुद्धि उसको चल रही है, उसको पर और स्व का विभाग मालूम नहीं है, इसलिए वो पर द्रव्य मय ही अपना स्व द्रव्य को मानता रहता है। पर द्रव्य में माने कि देव शास्त्र गुरु है तो उसमय मेरा आत्मा है ऐसा मानता रहता है, या तो संसार अपेक्षा से स्त्री कुटुंब परिवार मन मेरा आत्मा है ऐसा पर द्रव्य में मानता रहता है। गुरुदेव ने इसमें स्पष्ट किया है कि भाई देखो, देव शास्त्र गुरु की बात चले तो उसको पर द्रव्य क्यों कहा जाता है, कि अपन ने जो पहला कलप की बात की कि मेरा ज्ञान है वो ज्ञान उसमें नहीं है, इसलिए ये स्वद्रव्य की अपेक्षा से उसको भी पर द्रव्य कहा जाता है। मगर एक प्रकार का देव शास्त्र गुरु का जो पर है उसका निमित्त नहीं कि संबंध वो उसको जीव निकाल नहीं सकता, क्योंकि अपने पास देव शास्त्र गुरु निमित्त रूप से रहते हैं और उसकी जिनवान भी रहती है। तीर्थ संगत की दिव्य ध्वनि तो यहाँ अभी स्थिति नहीं है, मगर दिव्य ध्वनि व देखना अपने पास किसी गुरुदेव श्री की भी अभी है तो क्या है कि वो निमित पणे है और वो निमित है और यहाँ निमित भाव भी प्रकट होता है, मगर ऐसा निमित नहीं कि भाव को देखकर जीव को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि ये निमित रूप मेरा द्रव्य हुआ इसलिए यहाँ मेरी पर्यायती हो गई। ऐसा पर द्रव्य में स्व द्रव्य को पर द्रव्य मय करता रहता है उसको सचमुच में अज्ञानी बोला जाता है। देखो निमित नहीं कि सबल की जो बात है ना, उसमें निमित भी सचमुच अकिंचित अनादि अनंत है, कोई निमित दूसरे के परिणाम में कुछ फेरफार कर सकता ही नहीं है। निमित निमित की जगह है, यहाँ जो निमित होता है वो भी सचमुच में तो अपना संक उपादान है, अपना संक उपादान वो निमित तो निमित की सापेक्षता से कहा जाता है, मगर सचमुच में देखे तो अपनी पर्याय अपने संत उपादान से या तो संत अशुद्ध उपादान से या तो संत शुद्ध उपादान से ही प्रकट होती है। तब वो जैसी पर्याय होए, तब वो जैसा भाव चले तो बाहर में ऐसा जो कोई नहीं है तो उसको निमित कहने का व्यवहार खड़ा होता है। देखो एक ही पर्याय है, जीव की पर्याय एक है, वो एक ही पर्याय में संत उपादान और नैमित्तिकपण है, पर्याय एक ही है, दो पर्याय नहीं, एक ही पर्याय में वो पर्याय को अपन सत्कार से देखे तो वो अपने संत उपादान से प्रकट होती है, उसका कोई कर्ता नहीं है, पर तो कर्ता नहीं है, द्रव्य भी उसका कर्ता नहीं है, और वही पर्याय को अपन नैमित्तिक से देखे तो बाहर में ऐसा निमित्त जरूर है। ऐसे दो भाव एक ही पर्याय में उसको स्वतंत्रता से देखो, गुरुदेव की वाणी में तो स्वतंत्रता का ढंडेरा ही आता है। देखो ये अभी प्रवचन चला है, वो ज्ञान में
ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करते हैं, ज्ञान की पर्यायता स्वभाव को, तो उसमें कुछ कोई भी बाह्य चीज को स्पर्श नहीं करने देते, निमित्त रूप भी नहीं रखने देते कि यहाँ पर का प्रतिभा हुआ इसलिए यहाँ जानना हुआ, पर का आकार यहाँ हुआ इसलिए यहाँ जानना हुआ, बिल्कुल पर की अपेक्षा का निषेध करके ज्ञान का जानना स्वभाव है उसको ही सिद्ध करते रहते हैं कि ज्ञान का स्वतः सिद्ध जानना स्वभाव है, उसको कोई निमित्त की परिस्थिति ज्ञान की अपेक्षा सचमुच में लागू ही नहीं पड़ती है, मगर अज्ञानी जीव को यही भ्रांति चलती है कि मैं स्वद्रव्य और मेरी पर्याय वो पर से प्रथम है, ऐसा उसको लगता ही नहीं, ऐसी मान्यता ही उसकी नहीं चलती, इसलिए पर द्रव्य मय में हो गया हूँ, मेरा आत्मा या तो मेरी पर्याय पर द्रव्य मय है, अगर पर द्रव्य नहीं होता निमित रूप से तो मेरे को यहाँ ये भाव ही प्रकट नहीं होता, अगर गुरुदेव की वाणी में नहीं सुनता तो मुझे यहाँ ये भाव ही नहीं आता, ऐसा कर करके उसकी निमित आदि दृष्टि छूटती नहीं, इसलिए निमित्ता उसको मन की पक्ष चलता है, निमित्त का पक्ष चलता है, एकांत से निमित्त का पक्ष चलता है, हैं? वो पक्ष तोड़ने के लिए निमित्त में भी कुछ संबंध में अपने को क्षणिक उपादान से प्रत्येक पर्याय को देखना है, जो जीव क्षणिक उपादान से देखने का सीख जाता है, जिसको पता चलता है कि मेरी पर्याय सत्कार से ही प्रकट होती है, मेरी पर्याय में जो जानना होता है वो मेरे से ही होता है, वो परद्रव्य में कुछ लेना देना उसने मेरे को है ही नहीं, ऐसा जिसको पता चल जाता है तो वो एक समय उसको पता चला, दूसरे समय तीसरे समय फिर वो पर्याय के सामने देखता नहीं है, क्योंकि वो कई उपादान से ही होने वाली है, तो फिर मेरे को पर्याय को क्यों देखना, पर को तो नहीं देखना मगर पर्याय को भी क्यों देखना, क्योंकि वो सत्कार से ही होती है, कोई निमित्त की अपेक्षा ही नहीं है उसमें, तो फिर उसको मेरे को पर्याय को क्यों देखना, तो वो पर्याय को पर को देखना बंद करके पर्याय में भी पर्याय का भेद से भी हट के मैं विकास द्रव्य हूँ, ऐसा उसका परिणमन होता है कि मैं पर द्रव्यमय तो नहीं हूँ मगर मेरे में भी जो मेरा अंश रूप परिणमन है वो अंश का भेद से भी जागृत होके मैं तो एक त्रिकाली सत्ता हूँ, ऐसा करके वो माने की वो उसका पर द्रव्यमय का पक्ष छोड़ के मैं स्वद्रव्यमय ही स्वद्रव्य हूँ ऐसा त्यागवादी हो जाता है। सबसे पहले में पहले निमित निमित संबंध प्रत्येक समय में होता है, फिर भी उसको वहाँ गौण करके संत उपादान की जो स्थिति है कि पर्याय अपने सत्कार से ही प्रकट होती है, अगर जो पर्याय को मैं फिरा फिराना चाहूँ वो फिरा सकता हूँ, इसी मान्यता किसी की हो गए कि मैं पुरुषार्थ करके ही पर्याय को कुछ पलट दू, द्रव्य सन्मुखता पुरुषार्थ करूँ तो मेरी पर्याय पलट जाएगी, तो द्रव्यता सन्मुखता पुरुषार्थ वाली पर्याय उसको माने की कर्तृत्व से अगर करनी है तो वो पर्याय कभी नहीं होती है, यथार्थ ज्ञान के बिना पुरुषार्थ भी चालू नहीं होता, इसीलिए जो जीव को वो किसी को ऐसा लगे कि ये पर्याय को फिरा ये पर्याय को फिरा ये पर्याय को फिरा है मेरे पुरुषार्थ से पर्याय फिर गई, तो मैं ये बोलता हूँ कि पुरुषार्थ से नित्या दर्शन की पर्याय चली गई सम्यक दर्शन की आ गई, तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय ही पुरुषार्थ से क्यों करे, केवल ज्ञान ही कर लेना वो है सम्यक दर्शन ही क्यों करे, अरविंद भगवान है वो शीत अवस्था में क्यों नहीं जा सकते थे, अरे भैया पर्याय सब क्रम में है, क्षणिक उपादान से होती है, कोई निमित की सापेक्षता उसको बिल्कुल लागू नहीं पड़ती है, निमित निमित संबंध जरूर है, नहीं है ऐसा नहीं है, कोई उसको निकाल दे तो ऐसा भी नहीं है, और कोई निमित का आग्रह रखे ऐसा भी नहीं है, ये अनेकांत मार्ग है, इस तरीके से सोच समझ के चलना चाहिए, जैसे देखो जल है जल पानी है पानी, तो पानी पानी का स्वभाव तो शीतल है, ठंडा स्वभाव है पानी का, अभी पानी का स्वभाव तो शीतल है ठंडा है, अभी उष्णता भी पानी में हो जाए तो उष्णता हुई, पानी उष्ण हो गया तो बोले कि वो तो उसके संयुक्त उपादान से हुआ होगा, वो बड़ा संयुक्त उपादान से उष्ण हुआ, क्योंकि उष्ण हुआ वो फिर शीतल भी होने वाला है, वो भी उसका संयुक्त उपादान ही है, मगर उसमें निमित्त कोई हेतु नहीं है, जरूर निमित्त है, अग्नि निमित्त रूप से है वहां, मगर वो निमित्त रूप से है, उपादान में वो कुछ फेरफार नहीं कर सकती। अभी पानी उष्ण हुआ तो पानी उष्ण हुआ तो उसका जो शीतल स्वभाव है वो शीतल स्वभाव उष्णता हो गई तो चला जाता है कि रहता है, वो तो कायम रहता है शीतल स्वभाव, वो उष्णता समयवर्ती हुई है, वो उष्णता अपने से हुई है, उसको बोला जाता है संयुक्त उपादान, संयुक्त अशुद्ध उपादान, स्वभाव उपादान हो गए तो उसको संयुक्त शुद्ध उपादान बोला जाता है, और स्वभाव के विरुद्ध उपादान संयुक्त हो गए तो उसको अशुद्ध उपादान बोला जाता है। देखो अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान दोनों में निमित्त जरूर होता है, मगर वो होती है अपने खत्ता, क्योंकि उसने उसका स्वभाव कभी छोड़ा नहीं है, उसको आप ऐसे ऐसे पानी को रखो या तो आप कहीं आग लगी है वहां वो गर्म पानी ही डाल दो तो वो आग बुझ जाएगी, तो उसका शीतलता रूप स्वभाव है वो कभी छूटता नहीं है, इसीलिए पानी जो है वो गर्म हुआ है वो भी सत्यार्थ है, अग्नि का निमित्त है वो भी सत्यार्थ है, मगर अग्नि से बिल्कुल नहीं हुआ, उसकी यहाँ योग्यता रूप होने की सत्यार्थ परिणाम है, तब वहाँ बाद में निमित्त है तो उसको ऐसा लगता है कि ये निमित्त रूप ही मेरा द्रव्य हो गया है, मैं मेरा आत्मा स्वद्रव्यमय है, वो पर द्रव्यमय ही हो गया है, ऐसा पर द्रव्यमय मानकर अपना स्वद्रव्य का नाश करता है, और जो संवेदनादी होता है वो त्यागवादी होता है, वो जानता जरूर है कि बाहर में नीच है, यहाँ नई कुछ भाव प्रकट हुआ, मगर वो ऐसा जानता मानता है कि मेरा द्रव्य स्वभाव तो अखंडित है, और मेरी पर्याय में जो ये परिणमन चल रहा है वो मेरे ही संयुक्त उपादान से चल रहा है, उसमें किसी का बाह्य वस्तुओं का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है, ऐसा उसने अपने द्रव्य को कब्जे कर लिया है, इसलिए द्रव्य पर्याय का यथार्थ ज्ञान उसको सभी समय परिणम रहा है, उसको बोला जाता है कि ये त्यागवादी, उसने अनेकांत धर्म प्रगट कर लिया और उसकी मान्यता में सम्यकता प्रगट हो गई। ऐसी कृष्ण गुरुदेव ने भी बात की है, मेरी संबंध इसमें बहुत दिया है, और सियासी ज्यादा आगे सम्यकता की है कि अनुकूल और अनुरूप है, कुंभार और घड़ा का दृष्टांत देखे उसमें अनुकूल और अनुरूप आता है, जैसे घट बड़ा तो कहते उसको अनुकूल निमित्त तो बाहर में कुंभार भी है, वहाँ धोबी नहीं है, वहाँ दर्जी भी नहीं है, मगर अनुकूल निमित्त कौन सा है, तो कुंभार का अनुकूल निमित्त है, और यहाँ घट होता है वो उसके अनुरूप हुआ है, तो अनुकूल और अनुरूप ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, मगर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख कर उसे ऐसी क्रांति हो जाए कि ये कार्य हुआ वो निमित्त से ही हुआ है, तो ऐसी भ्रांति जब तक चलती है तब तक संयुक्त उपादान में जीव नहीं आता है, और संयुक्त उपादान में जब तक नहीं आता तब तक संसारी द्रव्य की दृष्टि तो उसको होती ही नहीं है, क्योंकि निमित्त का लक्ष्य ही उसको चलता रहता है। देखो ज्ञान में पता चल जाता है कि ये निमित्त है ये नहीं निमित्त है, ये सब तो उनको बहुत साल से अभ्यास करता है तो मालूम है, मगर फिर भी प्रज्ञा सिंह से भेदना नहीं चलता है, जब तक प्रज्ञा सिंह से भेदना नहीं चले कि ये निमित्त पृथक चीज है, मेरा त्रिकाली द्रव्य गुण पर्याय पृथक चीज है, मेरी पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है, पर से मेरे में कुछ नहीं होता। मेरा द्रव्य कभी पर द्रव्य में कभी होता ही नहीं। अगर पर द्रव्य में मेरा द्रव्य हो जाए तो मेरा खुद का ही नाश हो जाए, क्योंकि मेरा द्रव्य को पर्याय कुछ न बचे ऐसी उसकी मान्यता चलती ही नहीं है। इसलिए यहाँ बताना चाहते हैं कि यूनिट नैमित्तिक संबंध होते हुए भी तू तेरा द्रव्य को स्वीकारी उपादान से देख और तेरी पर्याय को क्षणिक उपादान से देख, उसमें सरकार से जो परिणमन हुआ हो रहा है उसको कोई गिरा नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अंदर में ध्रुव में उसके गुणों में पारिणामिक भाव रूप अभी वर्तमान में पड़ी है। कोई पर्याय बाहर से नहीं आती, कोई पर्याय पर्याय में से नहीं आती। सभी पर्याय द्रव्य में जो पारिणामिक भाव पड़ा है, भूतकाल की भी वहाँ योग्यता रूप पड़ी है, भविष्य काल की भी शक्ति रूप पड़ी है, सभी अंदर में पड़ा है। तो अपने को अंदर में मेरी वस्तु क्या है, अंदर में मेरा स्वरूप क्या है, मेरा त्रिकाल ज्ञान दर्शन परमात्मा कैसा है, ऐसी ही दृष्टि उसकी बननी चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि बन जाए उसकी तो पर्याय का परिणाम तो स्वतंत्र चलता ही रहेगा, उस पर उसकी नजर ही नहीं आएगी। उसकी नजर एक बार अंदर चली गई तो नजर बाहर ही नहीं निकलेगी। ऐसा कोई मेरा परिपूर्ण परमात्म स्वभाव है उस पर दृष्टि कब जाती है, कि जब नियमित नैमित्तिक संबंध का जो व्यवहार है वहाँ से दृष्टि उठ जाती है, भेद ज्ञान की प्रगणाशीली लगती है और पर्ता और स्व का भेद ज्ञान जिसको चलने लगता है उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर जाके द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान कर लेती है, तब उसको सम्यकता से पता चलता है कि मेरा द्रव्य शुद्ध, मेरा गुण शुद्ध और मेरी पर्याय जो प्रगत द्रव्य के आश्रय से हुई वो भी शुद्ध है। उसमें जो परिणाम चल रहा है वो परिणाम अपने सत्कार से जैसे जानना 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 और जो पदार्थ का जानना चलेगा वो जानने की पर्याय की क्रम कर है, उसको भी मैं पलटा नहीं सकता ऐसा उसका अभिप्राय हो जाएगा। तो ऐसा अभिप्राय से भी त्यागवादी और अनेकांतवादी होता है। ये पूरा गलत में ये स्वद्रव्य पर द्रव्य में हो गया है, उसमें निमित नहीं कुछ सबन से इसको सिद्ध किया है। उसके बाद में 254 नंबर का समझ आता है। ये सब असत का जो पूरा प्रकरण है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के है। स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव के अस्थि और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव से नास्ति। वो अपन ने कल बात की थी कि सरस गीता में उसका बहुत विस्तार आया है। ये 252 नंबर से कलश था और 252 नंबर में ही पूरा ये सभी आठों कलश का भाव उसने लिया है राजमल जी साहब ने। उसमें बहुत गहराई वाली बात और सूक्ष्म बात आज गुरुदेव जी ने भी बोला था कलश गीता का, कि उसमें बहुत सूक्ष्मता से बात ली है। उसमें वहाँ क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो अपना स्वद्रव्य क्षेत्र का अलगाव है, एक तरफ पर का द्रव्य क्षेत्र का अलगाव है। स्वद्रव्य माने निर्विकल वस्तु मात्र, स्व क्षेत्र माने जो आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, स्वकाल माने वहाँ त्रिकाली को स्वकाल मिल गया है। त्रिकाली की मूल अवस्था उसका नाम स्वकाल, वहाँ पहले नहीं है राजमल जी साहब ने, आप देख लेना गुरुदेव ने भी स्पष्टीकरण किया है उसका। वो स्वकाल मिल गया, स्वकाल माने ये तो यहाँ भी आता है कि स्वकाल माने अपनी एक समय की अवस्था, उत्पाद देने वाली अवस्था, उत्पाद देने वाली पर्याय, परिणाम वाली पर्याय। वहाँ क्या किया है, स्वकाल माने की अपनी त्रिकालता और त्रिकालता में अपनी त्रिकाली मूल अवस्था और स्वभाव माने अपना आनंद गुण, उसको स्वभाव बोला गया। अभी इससे पर द्रव्य की व्याख्या की इसमें, पर द्रव्य में माने की ये तो स्वद्रव्य सत और असत, असत माने पर द्रव्य, तो उसमें पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव, तो उसने पर द्रव्य किसको बोला। पर द्रव्य माने कि द्रव्य गुण पर पृथक पर द्रव्य, उसको पर द्रव्य वहां नहीं बोला। वहां पर द्रव्य की व्याख्या ही राजमंदी साहब ने अलग की कि जो अपना त्रिकाल द्रव्य है, अपना सात्वक त्रिकाल द्रव्य है, अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा है, वो अखंड है, वो ध्रुव रूप है, वो अनादि अनंत अनंत गुणात्मक एक अखंड है, उसमें ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ऐसा विकल्प था, ऐसा विकल्प उसको वहां पर द्रव्य बोला। ये प्रति पृथक है, उज्जल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश का, ये तो पृथक ही है, अन्य जीव सब पृथक है, मगर वहां स्वद्रव्य 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 ऐसा विकल्प उठाना, ऐसा विकल्प उठाना, उसको ऐसा कहा कि वो सौ विकल्प भेद कल्पना, सौ विकल्प भेद कल्पना, उसको वहां पौन द्रव्य बोल दिया। ऐसे ही क्या बोला, स्वक्षेत्र, क्योंकि स्वक्षेत्र का विकल्प था, ये क्षेत्र ऐसा है, ये क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र में ऐसा है, ये क्षेत्र में ऐसा है, स्पष्टीकरण यहाँ चलता है, उसका निषेध नहीं है, ऐसा नहीं समझना आप लोग, वो तो स्पष्टीकरण में तो पूरा असम के प्रदेश क्षेत्र का जो स्पष्टीकरण आता है ना, बहुत बढ़िया है, मगर उसमें भेद करना कि ये क्षेत्र में ये अलग गुण, दूसरे क्षेत्र में ये अलग गुण, ये क्षेत्र है उसके एक 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 क्षेत्र का भेद करना है, वो क्षेत्र 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 ये क्षेत्र में ये क्षेत्र में ये क्षेत्र में ऐसा असंख्य प्रदेशी क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र होने से एक एक प्रदेश को मैंने की भेद करके देखना, उसको फर्क क्षेत्र होगा वहां पे, और त्रिकाल को काल बोला, अपनी मूल अवस्था, त्रिकाल काल माने त्रिकाल द्रव्य अपना, उसकी मूल अवस्था, मूल अवस्था माने पारिणामिक भाव, माने की उसकी त्रिकालता, माने की उसकी शाश्वतता, द्रव्य गुण ध्रुव बजे उसकी शाश्वतता, उसमें ये काल में भी कोई विकल्प उठाना कि ये मूल अवस्था, ये मूल अवस्था, ये त्रिकालता, ऐसा विकल्प उठाना, उसका नाम पर काल, वो एक समय की व्यवस्था, उसको पर काल में भाव है, और अनाज गुणात्मक जो भाव है उसमें ये ज्ञान गुण, ये दर्शन गुण, ये शुभ गुण, ये नीले गुण, ये प्रभुत्व गुण, ऐसा गुणों का भाव में ढेर का विकल्प उठाना, उसको वहां पर भाव बोला। देखो कहां तक की सूक्ष्मता ले रहे हैं, अभी तो जीव पर द्रव्य को पर द्रव्य मानने के लिए ही उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर द्रव्य को पर द्रव्य मैं मानता रहेगा, पर द्रव्य नहीं हो गया, पर द्रव्य से मुझे कुछ लाभ होगा, पर द्रव्य की कुछ होगी, माने की कुछ ट्यूशन करती वाणी सुनूंगा तो मुझे समय दर्शन की प्राप्ति होगी, पर द्रव्य से एक तो बुद्धि नहीं छूटती उसकी, और यहाँ राजमंडी का जैसा कहना चाहते हैं कि ये पर द्रव्य की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, विकल्प उठता है वो पर द्रव्य की भी यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो स्वद्रव्य हूँ, स्वक्षेत्र हूँ, स्वकाल रूप हूँ और स्वभाव रूप हूँ, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद करना, उसको स्वद्रव्य पर क्षेत्र पर काल प्रभाव बोला जाता है, स्वद्रव्य नहीं उसका तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी खंड करना, वो अखंड है, उसका भी खंड करना, उसको यहाँ तो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव कहा गया है। इसी कुछ गुरुदेव जी की सही है, ये जो चीज आती है वो गुरुदेव तो इतना खोलते हैं, उसको इतना खोलते हैं, आप पढ़ना उसमें कल्पतामृत बाल आठ में, उसमें वो छपा है, और 77 का प्रवचन भी छापा है, और 66 का प्रवचन भी उसमें छाप दिया है, बहुत उसमें सूक्ष्मता आई है, ऐसी ऐसी बहुत गहन बातें अपने पास मौजूद है, क्योंकि ये क्या है कि ये समझ का पिंड है, जीव है ना, वो समझ का भी है, वो पुरुषार्थ ही पदार्थ है, आचार्य भगवान या तो कोई साधक जीव है ना, वो कुछ भी लिखते हैं तो इसलिए नहीं लिखते हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं लिखता है, सबको ये समझ में आ जाएगा इसलिए वो लिखते हैं, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आवे तो भी अपने पास ऐसा उपयोग रूपी धन है, अपनी पूंजी है उपयोग रूपी अपने पास, उसमें ये सब छीन छीन करके जानना हो जाता है, उपयोग को संचालक बनाओ, उपयोग की क्रिया निरंतर कैसे चले उससे भेदना की प्रक्रिया का खोज करो। अभेद की दृष्टि हो और ज्ञान में सब द्रव्य गुण प्रलय का ज्ञान होए ऐसा अभिप्राय बनाओ, तब ये सब जो चीजें सूक्ष्मता से कही जाती है वो भी सब मात्रा में समझ आ सकती है। कोई ऐसी सूक्ष्मता नहीं होती है कि किसी को समझ में नहीं आए इसलिए लिख जाता हूँ। लिखकर जी ने दिखाया था कि अभी तो ये बात समझने वाले आगम के अभ्यास वाले भी मुझे दिखते नहीं है, इसलिए मैं लिख जाता हूँ, मैं लिख जाता हूँ तो कोई न कोई तो ऐसा निकलेगा कि इनका अर्थ करके प्रस्तुति करेगा, तो अपने को भूले भूले कितना अर्थ किया भीष्म जी का परमात्मा पुराण सवैया, वो गुरुदेव बोलते हैं अध्यात्म पंच संग्रह, कितना 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 पढ़ के कुछ गुरुदेव जी ने सब इसमें से रहस्य निकाल दिया। तो ये उपयोग की सूक्ष्मता और जानना 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 मेरा स्वभाव है उसकी मुख्यता रखते है ये सब चलना चाहिए, तभी उसका अभिप्राय ऐसा बनता है कि मैं मेरे स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ और मेरा परिणाम भी मेरे से ही हो रहा है। अपरिणाम तत्व तो मैं स्वभाव के हूँ और मेरा परिणाम जो स्वभाव है वो मेरे से ही होता है, इसमें कोई पर से कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। एक नायक और एक उसका ज्ञान, ये आत्मा है क्या, उसके बाद कहीं आत्मा नहीं है। और वो ज्ञान और नायक का जब तक भेद चल रहा है तब तक विकल्प की उत्पत्ति होती है, राग की उत्पत्ति होती है, और उसका जब अवैध परिणाम हो जाता है तो वहाँ निर्विकलता और विकलांगता की उत्पत्ति होती है। ये पूरा विनायक और ज्ञान को समझकर उसका भेद विकल्प को भी छोड़ के मैं तो अवैध परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो विनायक देव हूँ, मैं तो शाश्वत ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो ऐसा ऐसा निर्लेप नित्य परमात्मा हूँ, मुझे लेप लगाई नहीं इसलिए मुझे लेप निकालने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से अपने द्रव्य को देखना चाहिए। पर्याय में भी सचमुच में कोई पर्दा लेप लग ही नहीं सकता, पर्याय अपने सत्कार से ही परिणाम नहीं है, ऐसी दृष्टि भी बन जाती है ना पर्याय की भी, तो फिर से वो पर्याय को देखने का उसका पुरुषार्थ उठ जाता है और द्रव्य को देखने का पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। और पर्याय जानने में नहीं आती है कभी नहीं होता, पर्याय का ज्ञान तो उसको होने वाला ही है, इसलिए द्रव्य की दृष्टि से ही वास्तव पर्याय वास्तविक पर्याय का ज्ञान होता है। इस तरीके से अपनी सोच चलनी चाहिए। आगे अपना 254 कलर अपन बोल लेते हैं, टाइम है थोड़ा, 2-3 मिनट को चलाएंगे 254 कलर। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी योजना में भीम क्षेत्र में रहना मेल पदार्थों में जो मेघ नायक संबंध रूप निश्चित व्यापार उसमें प्रवक्ता हुआ आत्मा को समस्तपणे बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व नहीं मानकर सदा नाश पाता है और त्यागवाद का जानने वाला तो स्व क्षेत्र से अस्थिपना स्व क्षेत्र से अस्थिपना के कारण जिसका वेद रुक गया है ऐसा होता हुआ अर्थात स्व क्षेत्र में बचता हुआ आत्मा में ही आकार रूप
आकारित हुआ ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर सीखता है और जिंदा रहता है, नष्ट नहीं होता। रावत एकांतवादी जीव क्षेत्र में रहे हुए नए पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्ता आत्मा को बाहर ही पड़ता मानकर वह क्षेत्र से अस्तित्व नहीं मानकर अपने को नष्ट करता है और स्यादवादी को वह क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानते हुए भी अपना क्षेत्र में रहता हुआ आत्मा वह क्षेत्र से अस्तित्व को धाता है ऐसा मानता था सीख रहा है नाश कामता नहीं है। ये क्षेत्र का बोध है स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र का बोध तो पचपन में है। अपन उसका खुलासा दोपहर को करेंगे। कभी कभी भी ऐसा स्वरूप समझ कर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे ऐसी मंगल बाबा।